Krishna. तो श्री राधाष्टमी के महोत्सव को मनाने के लिए इंद्रदेव भी सहभागी हुए हैं, अपने प्रेम के अश्रु बहा रहे हैं कि कितना आनंद का उत्सव है कि श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य इसी दिवस पर हुआ था ब्रजभूमि में। वृंदावन में राधाष्टमी का महोत्सव बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, बल्कि ब्रजभूमि में वृंदावन, बरसाना, रावल इत्यादि इन जगहों में जन्माष्टमी इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि राधाष्टमी है। वहां सभी लोग पूछते हैं राधा रानी को, कृष्ण को नहीं पूछते। राधा रानी कहेंगी तो कृष्ण को पूछे, तो सब जगह राधे राधे की ध्वनि गूंजती रहती है सारे ब्रज भूमि में। तो राधाष्टमी के दिवस पर, जो कि बहुत पावन दिवस है, हमें थोड़ा याद करना चाहिए श्रीमती राधा रानी के दिव्य गुणों का, और ये भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी वैसे हैं कौन, और इतना महत्व हम उन्हें क्यों देते हैं, और व्रज भूमि में खास करके इतना महत्व क्यों दिया जाता है। श्री कृष्ण परम सत्य हैं, परम भोक्ता हैं, परम नियंता हैं, परम स्वामी हैं, मालिक है, भगवान है, ये तो सभी को पता है। परंतु भगवान होने के बाद भी उनको श्रीमती राधा रानी की क्या आवश्यकता है, और श्रीमती राधा रानी कौन है जो कि हमेशा उनके साथ में रहती हैं। कई लोगों की धारणा ऐसी होती है कि परम सत्य केवल एक प्रकाश है, कोई ज्योति है, और वो बस ऐसे ही चुपचाप बैठे रहते हैं, अपने अंतःकरण में ही, अपने अंदर ही आनंद का अनुभव करते हैं। वो भी सही है कि भगवान तो आत्मा राम है ही, आत्मा राम वो होते हैं जो अपने अंदर ही आनंद का अनुभव करते हैं, इसलिए अपने से बाहर किसी वस्तु या व्यक्ति में आनंद खोजने का प्रयास नहीं करते हैं, ये आत्मा राम होता है। तो ऐसे भी कई संत हुए हैं और हैं और होंगे भी जो आत्मा राम है, जो कि बाह्य वस्तु में बिल्कुल रमण नहीं करते, संसार के वस्तु में, संसार का भोग करना वो पसंद नहीं करते हैं। वो अपने अंतःकरण में आत्मा के आनंद को का स्वाद लेना चाहते हैं, तो इसे ब्रह्म सुख कहते हैं। इस ब्रह्म सुख को पाने के लिए ऐसे इतिहास में कितने लाखों लाखों बड़े संत हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, योगी, ज्ञानी, भक्त इत्यादि हुए हैं, जिन्होंने संसार का सब कुछ त्याग करके केवल इस ब्रह्म सुख के पीछे अपना जीवन समर्पित किया है। अब संसार के दृष्टि से देखा जाए तो ये संसार का सुख तो बहुत अधिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत आकर्षक है, और लोगों को ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि कोई लोग इस संसार का सुख कैसे त्याग सकते हैं, जबकि इसका जो खिंचाव है इतना तीव्र है कि बड़े बड़े जो तपस्वी होते हैं वो भी भ्रमित हो जाते हैं। यत तो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसवम मनः। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि मन को, बुद्धि को हरण करके ले जाती हैं। केवल एक साधारण व्यक्ति की बात नहीं, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयम में रखने के लिए कई वर्षों से प्रयत्न कर रहा है, तपस्या कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए भी ये आसान नहीं है इंद्रियों को वश में करना। और संसार के सुखों को त्यागना बहुत मुश्किल है। और सारी दुनिया तो इस संसार को भोगने के पीछे लगी हुई है। तो जब ऐसे सुख को त्याग कर कोई व्यक्ति कोई दूसरी वस्तु को चाहता है तो हम समझ सकते हैं कि या तो वो पूरी तरह से पागल होगा या तो बहुत बुद्धिमान होगा। जो पागल व्यक्ति है वो तो समझता ही नहीं कि संसार क्या है, इसके परे क्या है, तो उसकी बात तो करना व्यर्थ है। परंतु जो इतने बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं इतिहास में, आज भी जो है जगह जगह, वो तो मूर्ख नहीं है, वो तो अल्प बुद्धि वाले नहीं है, वो तो बहुत बुद्धिमान है। यदि उन्होंने संसार के तथा कथित इतने बड़े बड़े सुख समृद्धि आदि को भोग को त्यागा है तो इसके पीछे कोई बहुत गहरा कारण होना चाहिए। और कारण क्या है कि संसार में जो सुख पाया जाता है उससे कहीं अधिक सुख पाने की चेष्टा में वो लगे हुए हैं। नहीं तो इस संसार के सुख को क्यों त्यागते। बुद्धिमान व्यक्ति जब किसी चीज को त्यागता है तो किसी अन्य श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने के लिए ही त्यागता है, अन्यथा उस वस्तु को त्यागने के लिए तैयार नहीं होता। हो उसके पास एक गाड़ी है, बहुत पुरानी हो गई है, तो वो चाहता है नई गाड़ी खरीद ले, तो पुरानी गाड़ी को त्यागता है। परंतु उसके पास धन नहीं है नई गाड़ी खरीदने के लिए, तो यूं ही वो क्यों पुरानी गाड़ी को त्यागेगा, पुरानी गाड़ी को इस्तेमाल करेगा। तो जब संसार का भोग त्यागने के लिए भी लोग तैयार हुए हैं तो इसका मतलब है कि इसके परे भी कुछ है। जब प्रभुपाद जी 1965 में पहली बार अमेरिका गए थे, न्यूयॉर्क में आकर उन्होंने देखा एक आश्चर्यजनक दृश्य। क्या था वो दृश्य कि कई तरुण और तरुणियां वहां केवल इस दुनिया को त्याग के भोग में लगे हुए हैं। न उनको विद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षण प्राप्त करने की इच्छा थी, न व्यवसाय नौकरी करने की इच्छा थी, न अपने माता पिता के बातों को मानने की इच्छा थी, न संसार में रह के कुछ ऐसे कार्य करने की इच्छा थी जो समाज इसको लाभदायक या मूल्यवान समझे। उन्होंने सारे समाज के प्रति विरोध किया हुआ था। तो उनको पता चला था कि इस संसार में कुछ है नहीं, ये जो हमारे समाज हमें कह रहा है करने के लिए इसमें कुछ दम नहीं है। परंतु इससे परे क्या है, इससे श्रेष्ठ क्या है, उनको पता नहीं था। इसलिए क्या करने लगे, मादक द्रव्यों का सेवन करना, ये गांजा हफीम आदि सब इसका सेवन करने लगे, शराब पीने लगे, अवैध स्त्री संग आदि सब करने लगे, मांसाहार तो पहले से करते थे वो तो जारी रखने लगे, तो ऐसे बहुत सारे पाप करने लगे। तो संसार से उब गए थे, परंतु संसार से परे है क्या, इसके ऊंचा क्या है, उनको नहीं पता था। परंतु जो बड़े बड़े संत महात्मा भक्त हुए हैं वो ऐसे अज्ञानी नहीं है, उनको पता है कि संसार के परे अध्यात्म है और उस आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करना वो चाहते हैं। और यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। भगवान ने हम सबको मनुष्य देह दिया है इस साधारण संसार का सुख भोगने के लिए नहीं, वो श्रेष्ठ आध्यात्मिक सुख या ब्रह्म सुख भोगने के लिए या उसका आनंद लेने के लिए। श्रीमद् भागवत में महाराज ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं, नायम देहो देह भाजाम रिलोके कष्टान कामान अर्हते विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धियेत यस्माद् ब्रह्म सौख्यम फनंतम। वो कहते हैं कि हे मेरे पुत्रों, देखो न अयम देह भाजाम रिलोके कष्टान कामान अर्हते विभुजाम ये। ये जो अयम देह, ये जो देह तुम लोगों ने प्राप्त किया है, इसको केवल इंद्रिय तृप्ति में, भोग में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो कि अन्य देहधारी प्राणियों के लिए भी उपलब्ध होता है, जैसे कि निम्न श्रेणी के पशु होते हैं, वो भी तो भोग कर ही रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन में तो लगे ही हुए हैं वो सब। लेकिन ऐसे देहधारी पशुओं में से या प्राणियों में से मनुष्य देह जो है बहुत विशेष होता है। मनुष्य देह मिलता है तपस्या करने के लिए, केवल तपस्या करके क्या मिलेगा? ब्रह्म सुख। तपो दिव्यम, हमें दिव्य तपस्या करनी चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र का, हे पुत्रों ऐसी दिव्य तपस्या करो जिसके द्वारा क्या होगा, वो ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धियेत, जो विशुद्ध सत्व शुद्ध ब्रह्म सुख का अनुभव करना है ये ऐसी दिव्य तपस्या से। तो ये ब्रह्म सुख कैसे होता है? अनंतम, जिसका कोई अंत ही नहीं होता। परंतु संसार के सुख का सुख ऐसे नहीं होता, इसकी शुरुआत तो होती है, बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। तो मनुष्य जीवन में चाहिए कि हमें वो ब्रह्म सुख का अनुभव करना चाहिए। तो ब्रह्म सुख का अनुभव जब हम करते हैं तो ये कौन सा है ब्रह्म सुख, कैसे पाया जाता है? भगवान परब्रह्म है। तो जब हमारी चेतना परब्रह्म भगवान में हम केंद्रित करते हैं, उनके नाम उच्चारण आदि में लगे रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तब हमें ये दिव्य सुख मिलता है। इस संसार की सेवा करके वो ब्रह्म सुख नहीं मिलेगा, ब्रह्म की सेवा करके ही ब्रह्म सुख मिलेगा। और भगवान तो परब्रह्म है, भगवान भी एक दिव्य व्यक्ति हैं, तो उनकी सेवा करने से, उनकी सेवा में रमण करने से हमें दिव्य आनंद मिलता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि इति रामपदे नासौ परम ब्रह्माभिधीयते। इस श्लोक का मतलब है कि जो योगी जन हैं वो रमण करते हैं किस चीज में? अनंते, अनंत में रमण करते हैं। जो अंतवत है उसमें नहीं रमण करते, अनंत में रमण करते हैं। और वो कैसा है वो आनंद? सत्यानंद, सच्चा आनंद है, झूठा आनंद नहीं है, चिदात्मनी आध्यात्मिक है वो। और क्योंकि वो परब्रह्म के ऊपर ध्यान करके, उनकी सेवा करके इस आनंद में रमण करते हैं, तो जो आनंद के रमण के विषय हैं परब्रह्म, उनको राम कहते हैं। इति राम पदेनासो परम ब्रह्म परम ब्रह्माभिधीयते। तो भगवान का नाम राम क्यों पड़ा? क्योंकि उनकी सेवा में रमण करने वाले ही सब बड़े बड़े योगी हैं, और ये रमण करके उनको ब्रह्म सुख का आनंद मिलता है। संसार के सुख के कहीं परे होता है ये ब्रह्म सुख। तो जब परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, जिनका और एक नाम राम भी है, उनके सेवा में रमण करके योगी जनों को, भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है, और ऐसे योगी जन सारे संसार को त्यागते हैं इस आनंद को पाने के लिए, तो भला वही परब्रह्म श्री कृष्ण राम कैसे इस संसार के भोग में रमण कर सकते हैं? संभव नहीं है। तो भगवान इस संसारी सुख में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते हैं, इससे निरासक्त रहते हैं, उदासीन रहते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि भगवान आनंद का अनुभव नहीं करते? अवश्य करते हैं। तो कोई कहेंगे वो आत्माराम है इसलिए उनको चुपचाप बैठना चाहिए, परंतु इस तरह के आत्माराम भगवान नहीं है। हमने आत्माराम शब्द की परिभाषा की थी कि आत्माराम वो है जो अपने बाहर किसी वस्तु में रमण करने की इच्छा नहीं रखता है, आत्मसंतुष्ट है। तो यहां जो योगी भक्त आदि होते हैं वो अपने अंतःकरण के आनंद में, भगवान के आनंद में लीन होते हैं, संसार के आनंद में नहीं, इसलिए उन्हें आत्माराम कहते हैं। क्योंकि उनका शरीर वो भी उनके बाहर है और ये संसार के अंदर जो भी कुछ है वो भी उनके बाहर है और न ही वो उनकी संपत्ति है, परंतु भगवान के साथ क्या है? भगवान के बाहर भला क्या है? कुछ नहीं, सब कुछ भगवान के अंदर ही है, सब कुछ भगवान की शक्ति ही है। तो जब भगवान अपने आध्यात्मिक या अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते हैं और उसमें रमण करते हैं तो फिर भी वो आत्माराम ही रहते हैं, क्योंकि वो अपने बाहर किसी वस्तु या व्यक्ति का भोग नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? यदि भगवान किसी अपने बाहर व्यक्ति या वस्तु का भोग कर रहे होते तो हम कहते कि ये आत्माराम नहीं है, ये दोष है भगवान में। परंतु भगवान के बाहर तो कुछ है ही नहीं, या तो भगवान है या भगवान की विविध शक्तियां हैं। और हमने ये भी अब देख लिया है कि भगवान इस निम्न श्रेणी के भौतिक शक्ति में रमण नहीं करते हैं, तो किसमें करते हैं? अपने आध्यात्मिक शक्ति में रमण करते हैं। इस शक्ति को चित शक्ति कहते हैं या स्वरूप शक्ति कहते हैं, अंतरंगा शक्ति कहते हैं, ये विविध नाम है भगवान की अंतरंगा शक्ति के। तो भगवान अपने अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते हैं और इन शक्तियों के साथ फिर प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान एक दिव्य सुंदर गुणवान व्यक्ति हैं, समस्त प्रकार के दिव्य गुणों से सुशोभित है उनका चरित्र। भगवान केवल प्रकाश नहीं है, भगवान एक दिव्य व्यक्ति होने के कारण उनके अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न होने वाले उनके अनगिनत पार्षद हैं, और इन पार्षदों के साथ में श्री कृष्ण प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, इनको लीला कहते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन गोविंद के चरणों में नमन करता हूँ जो कि परम सत्य हैं, भगवान हैं, और वो गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, और उन्होंने गोलोक में रहकर क्या किया है? क्या वो अकेले रहते हैं? नहीं, आत्मा राम होने के बाद भी या आत्मा राम होने के कारण उन्होंने अपने अंतरंगा शक्ति का विस्तार किया है, अपने आनंद चिन्मय रस का विस्तार किया है, और इस आनंद चिन्मय रस उनकी आध्यात्मिक शक्ति के विस्तार से उनके पार्षद बने हैं, जो कि निज रूपतया कला भी, जो उनके रूप के समान है, जो उनका शरीर जो है भगवान की तरह ही दिव्य है। तो भगवान जब गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं तो उनके साथ में उनके माता पिता नंद महाराज, माता यशोदा हैं, और वरिष्ठ गोपियां हैं, और गोपियां हैं जिनकी आयु कम है, ग्वाल बाल मित्र हैं उनके, गोपगण हैं, वरिष्ठ गोप हैं, गाय हैं, मोर हैं, वृक्ष हैं, हवा है, पानी है, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सारी विविधता वहां पे है जैसे यहाँ है। और जितने भी व्यक्तियां हैं और वस्तुएं हैं वहां पे, वो सब चिन्मय हैं, वो सारी चीजें उन्हीं तत्वों से बनी हुई हैं जिन तत्वों से श्री कृष्ण का शरीर बना हुआ है। जैसे यहाँ इस दुनिया में जो भी पाया जाता है, चाहे वो पेड़ हो और मिट्टी हो, पहाड़ हो, जल हो, वो भी इन तत्वों से बना हुआ है जिससे कि हमारा शरीर बना हुआ है। तो उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के धाम में जो भी कुछ है वो ऐसे तत्वों से बना हुआ है जिन जिन तत्वों से श्री कृष्ण का शरीर बना हुआ है। तो श्री कृष्ण का शरीर है सच्चिदानंद, सत का मतलब है कि अमर सत्य है, चित मतलब ज्ञान से पूर्ण, और आनंद मतलब आनंद से पूर्ण। तो वहां सब कुछ या हर कोई व्यक्ति सच्चिदानंद है और उनकी अनेक गोपियां हैं जो उनकी सेवा करती है वृंदावन में। ब्रह्मा जी ये भी कहते हैं, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम्। उनके धाम में ऐसे कोटि कोटि लक्ष्मियां हैं जो कि उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। तो ये लक्ष्मियां कैसी हैं, ये गोपियां कैसी हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो गोपियां हैं वृंदावन की वो हमारे माता, हमारे बहन, हमारे पत्नी, हमारे बेटी जैसे कोई इस संसार की महिलाएं हैं, ऐसे नहीं है वो। यहाँ जो महिलाएं हैं, जो हमारे माता बहन आदि सब हो सकते हैं, उनका शरीर जड़ पदार्थों से बना हुआ है, उनका शरीर आध्यात्मिक नहीं है और वो सब जीव हैं, परंतु गोलोक वृंदावन में निवास करने वाली जो गोपियां हैं वो साधारण जीव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भगवान की शक्ति, अंतरंग शक्ति के विस्तार हैं और भगवान के साथ आध्यात्मिक स्तर में आनंद चिन्मय रस, ये आध्यात्मिक रस का आदान प्रदान करते हैं। और इन समस्त गोपियों में जिनकी संख्या लाखों में है, अनगिनत है, उनके केंद्र बिंदु हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं, श्रीमती राधा रानी। तो श्री कृष्ण कोई साधारण लड़का नहीं है, हालांकि वृंदावन में ऐसे बर्ताव करते हैं। श्रीमती राधा रानी कोई साधारण लड़की नहीं है, हालांकि वो भी वृंदावन में व्रज में एक साधारण युवती की तरह व्यवहार करती हैं, बर्ताव करती हैं। श्री कृष्ण तो परम सत्य हैं, शक्तिमान हैं और श्रीमती राधा रानी उनकी अंतरंगा आध्यात्मिक लादनी शक्ति की मूर्तिमान स्वरूपिणी है, प्रमुख शक्ति है भगवान की। और श्री कृष्ण अपने अंतरंगा शक्ति के साथ रमण करते हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं है, वो फिर भी आत्मा राम ही रहते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी निज रूपतया कला भी उनके ही शरीर के विस्तार हैं। पुराणों में बताया गया है कि श्री कृष्ण के बायां तरफ से श्रीमती राधा रानी का उद्भव हुआ। तो यदि श्री कृष्ण अपने बाहर किसी चीज या वस्तु का में रमण करते थे तो उनमें दोष हम कह सकते थे, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। तो श्री कृष्ण ऐसे अपने शक्तियों का विस्तार करते हैं क्योंकि वो अपने आनंद को असीमित रूप में, असीमित मात्रा में बढ़ाना चाहते हैं। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ असीमित है, भौतिक जगत में सब कुछ सीमित है। यहां काल, स्थान, परिस्थिति की सीमा होती है, आध्यात्मिक जगत में कोई सीमा नहीं है। इसलिए भगवान भगवान होने के कारण अपने आनंद का वर्धन करते हैं इस तरह से। कई लोगों की धारणा है जो गलत है कि भगवान ने अपने आप को विस्तार करके आनंद पाने की चेष्टा करने में उनका दोष है। यदि वो भगवान है तो उनको क्या आवश्यकता थी ये करने के लिए? इसका उत्तर है कि वो परम सत्य है, आत्मा राम है और उनके बारे में सब कुछ अनंत है और असीमित है, इसलिए उनकी आनंद की भी कोई सीमा नहीं है। और क्योंकि वो यहाँ भौतिक जगत में रमण नहीं करते हैं, इसलिए आध्यात्मिक जगत में अपने गोलोक वृंदावन में उनकी लीलाएं चलती रहती हैं। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भी आनंद लेते हैं, सदैव आनंद लेते हैं। तो ऐसे रमण करने की प्रवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में है, इसलिए हमारे अंदर है, नहीं तो हमारे अंदर कैसे आती? क्योंकि हम भी तो भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। मम युवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः मनः षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जितने भी जीव यहाँ भौतिक जगत में हैं वो सब मेरे अंश मात्र हैं, परंतु मुझ भगवान को भूलकर अब इस भौतिक प्रकृति के कड़े नियमों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। तो भोग करने की या रमण करने की जो प्रवृत्ति हमारे अंदर में भी है अणु मात्रा में, परंतु अब वो दूषित रूप में है, क्योंकि हम माया में हैं, हमने अपने आप को शरीर समझा है, हम अपने आप को झूठा पुरुष या भोक्ता समझते हैं, स्वामी समझते हैं, बल्कि हम वास्तव में हैं दास। इसलिए ये आनंद लेने की प्रवृत्ति जो भगवान में है वो गलत नहीं है, बल्कि उनका वो मूल स्वरूप है। यदि भगवान के गुण क्या है ये जानना है तो आत्मा के गुण को देखना चाहिए और इसको अनेक गुना बढ़ाना चाहिए, अनगिनत गुना बढ़ाना चाहिए, तब भगवान मिलेंगे। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो खून निकालते हैं। अब खून निकालते हैं, कितना निकालते हैं, भले 5 मिलीलीटर 10 मिलीलीटर कुछ निकालते हैं, ऐसे नहीं है कि जितने भी 4-5 लीटर खून शरीर में वो सब निकालते हैं परीक्षा करने के लिए। जब 5-10 मिलीलीटर निकाल लेते हैं तो उनको पता चलता है कि सारा खून शरीर में कैसा है, सारे खून निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। या समुद्र का जल कैसा है इसकी परीक्षा करनी है तो थोड़ा सा जल लेके इसकी परीक्षा कर सकते हैं, फिर पता चलता है कि समुद्र का जल कैसा है, सारे समुद्र के जल की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ठीक उसी तरह से आत्मा के लक्षणों को पहचान के भगवान की पहचान हो सकती है। तो हमारे अंदर आनंद लेने की प्रवृत्ति है, इसका मतलब भगवान में है, परंतु भगवान में वो मूल रूप में अधिकृत है, क्योंकि वो भगवान का मूल स्वरूप है, भगवान का स्थान है वैसे, परंतु हमारा स्वरूप है दास होना, भगवान की सेवा करना। भगवान विभू है, हम अणु हैं। तो भगवान भी रमण करते हैं और उन्हीं का स्थान है रमण करना, तो उनका मुख्य रमण है श्रीमती राधा रानी के साथ, जो कि उनकी अंतरंगा शक्ति है। इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि ये उनकी समस्त लीलाओं में से सर्वश्रेष्ठ लीला है। परंतु इन लीलाओं को समझना ये आसान नहीं है। केवल जो मुक्त पुरुष होते हैं, आध्यात्मिक जीवन के चरम सीमा को प्राप्त किए हुए लोग होते हैं, वही राधा कृष्ण की लीलाओं को समझ सकते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे पढ़ा हुआ नहीं है अधिकृत ढंग से, वो राधा रानी को गलत समझेगा और इसलिए राधा रानी और कृष्ण के संबंध को भी गलत समझेगा। इसलिए प्रभुपाद जी चेतावनी देते हैं कि जब तक हम बहुत भक्ति में आगे पढ़े हुए नहीं होते हैं, तब तक राधा कृष्ण की लीलाओं को गहराई में जाके पढ़ना सुनना नहीं चाहिए। ऐसे लोग जो होते हैं जो बिना तैयारी के, बिना आध्यात्मिक प्रगति किए हुए, बिना हृदय का पर्याप्त मात्रा में शुद्धिकरण किए हुए राधा कृष्ण की लीलाओं में सीधे चले जाते हैं, उनका पतन हो जाता है और उनको सहजीय कहते हैं। जो लोग भगवान की लीलाओं को बहुत सहज या सस्ता लेते हैं, पर प्रभुपाद कहते हैं नहीं, हमें शुरुआत करना चाहिए विधियों का पालन करके, साधन भक्ति करके। बहुत सारे विधि और निषेध होते हैं आध्यात्मिक जीवन में, उनका पालन करना चाहिए। कृष्ण कौन है समझ लेना चाहिए, भक्ति क्या है समझ लेना चाहिए, और फिर धीरे धीरे राधा रानी कौन है ये समझ में आएगा, फिर राधा रानी और कृष्ण का संबंध क्या है वो और आगे चल के समझ में आएगा। परंतु सीधे हम राधा रानी और कृष्ण के पास जाएंगे तो निश्चित ही कोई गलत निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और इससे हमारे आध्यात्मिक जीवन में हानि पहुंच सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम श्रील प्रभुपाद जी ने और पूर्ववर्ती आचार्य जैसे रूप गोस्वामी ने बताए हुए पथ पर हम चले। इसे साधु वर्तमानुवर्तनम कहते हैं। साधु वर्तमान, साधुओं का पथ, जिस पथ पर साधु चले हैं, पूर्ववर्ती आचार्य चले हैं, उनके पदचिन्हों में हमें चलना चाहिए, उस पथ में हमें चलना चाहिए। इसका क्या मतलब है साधुओं के पथ में चलना? इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि साधुओं का पथ, ये साधु वर्तमान, ये पथ उन नियमों से बना हुआ है जिनका उल्लेख शास्त्रों में किया गया है। दूसरे शब्दों में, बड़े सख्ती से शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करते रहनी चाहिए। तब जाके धीरे 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 से, जैसे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होते रहता है और हम नम्रता से भगवान की सेवा करते रहते हैं भक्तों के संग में, तो ये सारी चीजें अपने आप प्रकाशित होती जाएंगी। हम समझ पाएंगे शनै शनै क्रमशः इन तत्वों को। तो राधा रानी और कृष्ण का विषय बहुत गुही है, बहुत गोपनीय है, इसलिए राधाष्टमी के अवसर पर भी हम श्रीमती राधा रानी के बारे में बहुत कम सुनाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसे किया। चैतन्य महाप्रभु ने चेतावनी दी थी कि भरी सभा में ऐसे राधा कृष्ण के जो बहुत गोपनीय लीलाएं होती हैं उनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जन साधारण को गलत समझेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने जितने भी राधाष्टमी के प्रवचन दिए उनमें अधिकतर ऐसे साधारण जो प्रारंभिक दर्शन है या ज्ञान है उसका वर्णन उन्होंने किया। तो श्रीमती राधा रानी परम भक्त हैं श्री कृष्ण के और भगवान की सेवा करती हैं, उनके जैसा कोई भक्त नहीं है। और श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि श्रीमती राधा रानी कितनी बड़ी भक्त हैं, ये समझना है तो हमें ये जानना होगा कि सारे लोग श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं जो भक्त है, परंतु श्री कृष्ण राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं। सारे भक्त कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं और कृष्ण राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं। जो कामदेव है, जिसने सारे ब्रह्मांड को वश में करके रखा है, जिसके चंगुल से निकलना बहुत मुश्किल है, ऐसे कामदेव को श्री कृष्ण आसानी से मोहित कर देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का नाम है मदन मोहन, मदन को भी मोहित करने वाले। परंतु श्रीमती राधा रानी है मदन मोहन मोहनी, मदन मोहन को भी मोहित करने वाली है, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण का हृदय अपनी सेवा से, अपनी भक्ति से इस तरह से जीत लिया है कि वो श्री कृष्ण को नियंत्रित करती हैं। श्री कृष्ण परम सत्य स्वतंत्र होने के बाद भी श्रीमती राधा रानी के अधीन रहते हैं। इसलिए आप वृंदावन में किसी से पूछिए परम कौन है, कृष्ण नहीं कहेंगे, वो कहेंगे राधा रानी। ये भाव है, क्योंकि रस या भाव के दुनिया में राधा रानी श्रेष्ठ हैं। तत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अवश्य श्री कृष्ण परम सत्य हैं, राधा रानी उनकी शक्ति हैं। परंतु जब आनंद चिन्मय रस, तब इस रस का आदान प्रदान जब होता है तो इस रस के दृष्टि से श्रीमती राधा रानी श्रेष्ठ हैं श्री कृष्ण से। जैसे आप जानते हैं कि घर में श्रेष्ठ कौन होता है, यह भली भांति आप सब जानते हैं, तो इसी तरह से श्रीमती राधा रानी भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी का नाम है आराधना पर निर्भर। जो सबसे अच्छे ढंग से आराधना करती हैं श्री कृष्ण की, जिनके द्वारा सर्वश्रेष्ठ पद्धति से आराधित है श्री कृष्ण, उनका नाम है राधा। तो श्रीमती शब्द भी कहा जाता है, ताकि हम राधा राधा नहीं कहते हैं, क्योंकि एक बहुत निकट का हो जाता है ना। तो हमको भी थोड़ा समझ लेना चाहिए कि हमारा स्थान क्या है, थोड़े सम्मान से हम बुलाते हैं। हम सीधे राधा नहीं कहते, हम श्रीमती कहते हैं, श्रीमती राधा रानी। तो ये श्रीमती या श्री शब्द का तात्पर्य है कि राधा रानी ऐश्वर्य से युक्त है, संपूर्ण ऐश्वर्य है उनमें, संपूर्ण मंगल है उनमें, संपूर्ण सौंदर्य है उनमें, इसलिए हम कहते हैं श्रीमती राधा रानी। एक बार मुझे याद है, एक भक्त बता रहे थे कि तमाल कृष्ण महाराज एक बार एक सत्संग में बैठे थे, तो राधाष्टमी का उत्सव था शायद, तो वो प्रवचन देने वाले थे, तो एक भक्त उनकी पहचान करा के दे रहे थे। तो उस भक्त ने पहचान कराते समय श्रीमती राधा रानी न कहकर कहा कि अभी राधिका का जन्मदिन है। उसने कहा, है क्या तुम इतने बड़े भक्त हो गए, राधिका का जन्मदिन है, श्रीमती राधा रानी का जन्मदिन है। इसलिए हमें थोड़े इस तरह से श्रीमती राधा रानी, हालांकि ब्रज में लोग ऐसे राधे राधे कहते हैं क्योंकि वृंदावन उनका भाव ऐसे है, परंतु हम जब साधन करके अपना हृदय शुद्ध करना चाहते हैं तो हमें अच्छी तरह से बड़े सावधानी से चलना चाहिए। इसलिए श्रीमती राधा रानी ये प्रेम का संबोधन भी होते हुए साथ साथ सम्मान का भी एक संबोधन है। तो श्रीमती राधा रानी की कृपा हम सबके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का प्रभाव श्री कृष्ण के ऊपर ऐसा है कि जब श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से कुछ कहती हैं तो कृष्ण इनकार नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने श्रीमती राधा रानी से कहा कि हम तो कृष्ण की सेवा इतने समय से करते आए, हृदय वैसे का वैसे है, थोड़ा सा प्रगति हो, थोड़ी सी प्रगति हो गई है, लेकिन अब आपके हवाले हम आए हैं, आप उनको कहिए कि वो हमें अपने चरणों में स्वीकार करें। तो जब श्रीमती राधा रानी को हम प्रसन्न करते हैं तो श्रीमती राधा रानी बहुत कृपालु होती हैं, तो कहती ठीक है ठीक है चलो। तो कृष्ण को कहती हैं, जरा ये भक्त हैं बेलगाम में, देखो ये जरा इनके ऊपर आप जरा कृपा करना। तो कृष्ण कहता है, अच्छा आप बोल रहे हो तो ठीक है, मुझे करना ही होगा। हालांकि वो टीवी भी देख लेता है बीच बीच, ठीक है, लेकिन उसको टीवी की आदत भी मैं छुड़वा दूंगा, चलो कोई बात नहीं है, मेरी कृपा ऐसे डालूंगा कि ये टीवी की आदत भी छूट जाएगी, चलो। तो राधा रानी को प्रसन्न करने का मतलब क्या है कि राधा रानी के पद चिन्हों में चलना। इसलिए प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बताते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ना है तो राधा रानी के पद चिन्हों में चलना है। ऐसे ब्रजवासी चलते हैं, इसलिए उनको राग भक्त कहते हैं, राग मार्ग में चलने वाले, जिनके स्वाभाविक रूप से हृदय में आकर्षण है और प्रेम है राधा रानी और कृष्ण के बीच के प्रति। तो श्रीमती राधा रानी दिव्य हैं, देवी हैं, देवी हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक हैं, दिव्य हैं। उनका भी जो प्राकट्य या जन्म इस दुनिया में होता है, इस जगत में होता है, वो भी उतना ही दिव्य है जितना कि श्री कृष्ण का प्राकट्य है, दिव्य है जितना कि श्री कृष्ण का प्राकट्य है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुना, कि हे अर्जुन, जो तत्त्वतः भली भांति जान लेता है कि मेरा जन्म और मेरे कर्म ये दिव्य हैं, अलौकिक हैं, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, बल्कि वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से श्रीमती राधा रानी का जन्म और उनके कार्य ये भी भौतिक नहीं है, ये भी दिव्य हैं, उतने ही दिव्य हैं जितना कि श्री कृष्ण के हैं। आनंद चिन्मय रस निज रूप तया कला भी, कोई अंतर नहीं, स्तर एक ही है। तो श्रीमती राधा रानी जब जन्म लेती हैं तो उनका जन्म भी वास्तव में जन्म नहीं होता, जैसे श्री कृष्ण का जन्म वैसे जन्म नहीं होता, केवल प्राकट्य होता है। फिर भी साधारण भाषा में जन्म कहते हैं, और अंततः श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी दोनों मनुष्य समाज में प्रकट हुए हैं, इसलिए चलो साधारण भाषा के लिए हम जन्म शब्द का प्रयोग करते हैं। राधा रानी का जन्म या आविर्भाव या प्राकट्य ब्रजभूमि में रावल नाम के गांव में हुआ था। आप में से जो ब्रजभूमि गए हैं अवश्य आप रावल भी जा चुके होंगे। वैसे पहले इस स्थान का नाम था मुख्य रावली। मुख्य रावली मतलब रावल, जो वहां का बड़ा व्यक्ति होता उसको रावल कहते हैं, और मुख्य मतलब जो मुख्य जमींदार थे वहां के, वो थे वृषभानु महाराज। जैसे श्री कृष्ण के पिता थे नंद महाराज, वैसे श्रीमती राधा रानी के पिता हैं वृषभानु महाराज, और वृषभानु महाराज की पत्नी थी कीर्तिदा देवी। तो दोनों वहां मुख्य रावली में रहा करते थे। अब क्योंकि श्री कृष्ण समय समय पर आते हैं, उनके साथ में श्रीमती राधा रानी भी आती हैं, उनके पार्षद भी आते हैं गोलोक वृंदावन से लीला में शामिल होने के लिए, तो उनके माता पिता भी उनके पहले आ जाते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी अलग अलग समय पर आते हैं इतिहास में, ब्रह्मा जी के एक दिवस में एक बार आते हैं, कभी कभी उनके प्राकट्यों के विस्तारों में थोड़े अंतर होते हैं, कभी इस तरह से प्रकट होते हैं, कभी उस तरह से प्रकट होते हैं। जैसे जब श्री कृष्ण कालिया दमन करते हैं, इस समय उन्होंने इस तरह से उनका दमन किया, किसी और समय उन्होंने किसी दूसरे तरह से कालिया का दमन किया होगा। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव की कथाओं का जहां प्रश्न है, अलग अलग ग्रंथों में कभी कभी अलग अलग वर्णन पाया जाता है, तो इसे हमें जान लेना चाहिए कि ये वर्णन हो सकते हैं अलग अलग प्राकट्यों के या कल्पों के संबंधित। गर्ग संहिता में बताया गया है कि श्रीमती राधा रानी कीर्तिदा देवी के गर्भ में प्रवेश कर गईं, जैसे कि श्री कृष्ण प्रवेश कर गए थे माता यशोदा के गर्भ में। हाँ, आप सोचेंगे अरे श्री कृष्ण तो देवकी के गर्भ में आए थे ना। हाँ, वहां भी आए थे, यहां भी आए थे, दो कृष्ण हुए थे। एक ही समय देवकी माता को कृष्ण हुए थे, यशोदा मैया को भी कृष्ण हुए थे। तो खैर गर्ग संहिता में ऐसे कहा गया है, पद्म पुराण आदि में कहा गया है, और अन्य ग्रंथों में प्रभुपाद जी ने बताया एक बार कि जब वृषभानु महाराज यज्ञ स्थल में गए थे, खेत में हल चला रहे थे यज्ञ स्थली को तैयार करने के लिए, तो अचानक उनको एक बहुत सुंदर बच्ची वहां मिल गई, जिसका रंग स्वर्ण पिघले हुए सोने का था, इसलिए उनका नाम है गौरांगी, गौर अंगी। उनके शरीर की कांति पिघले हुए सोने के समान है, अति सुंदर। तो उस बच्ची को उठाकर ले आए, अपने पत्नी कीर्तिदा देवी को दिया, और कीर्तिदा भी बहुत प्रसन्न हो गई। लेकिन और एक कथा है जो प्रचलित है खास करके ब्रज में, वो ये है कि वृषभानु महाराज जब एक बार यमुना में गए थे, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर हजार पंखुड़ियों वाला एक कमल पुष्प है, स्वर्ण का बना हुआ, जो यमुना के जल के अंदर है, चमक रहा था, बहुत सुंदर दिख रहा था वो कमल पुष्प। और उसके बीच में आश्चर्यचकित चकित होकर वृषभानु महाराज ने देखा कि एक सुंदर बच्ची पड़ी हुई है। हैरान हो गए देख के कि अरे ये कैसे हो गया, ये बच्ची कहां से आई और इतनी सुंदर बच्ची है। तो स्वाभाविक है वो उस बच्ची को लेने के लिए गए, लेकिन जितना भी वो प्रयास क्यों ना करे वो बच्ची का स्पर्श नहीं कर पाए। फिर उस समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी प्रकट हो गए वृषभानु महाराज के सामने और कहने लगे कि हे वृषभानु, ये जो बच्ची है ये कोई साधारण बच्ची नहीं है, ये आपकी पुत्री बनेगी अभी, लेकिन जान लो कि पहले भी ये विष्णु की संगी रह चुकी है और हमेशा है और इस बार भी है। इसका प्राकट्य बड़ा अद्भुत है, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की थी इसे अपने पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए, इसलिए आज तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए तुम्हारे सामने प्रकट हुई। ऐसे बताया जाता है कि वृषभानु महाराज अपने पूर्व जन्म में सुचंद्र थे और कीर्तिदा देवी कलावती देवी थी। तो सुचंद्र और कलावती इन्होंने बहुत तपस्या की थी ताकि राधा रानी आप हमारे बेटी बन के आई है। तो राधा रानी ने उनकी इच्छा पूरी कर दी और वो प्रकट हो गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा अब आपका दिव्य जीवन धन्य हो गया। तो ब्रह्मा जी ने उस पुत्री को उठा, उस कन्या को उठाया और वृषभानु महाराज के हाथों में दे दिया। वृषभानु महाराज तो बहुत प्रसन्न हो गए, खुशी की कोई सीमा नहीं रही। तो वो सीधे वापस गए अपने पत्नी के पास, कीर्तिदा देवी को दिखाया कि देखो कितनी सुंदर बच्ची है मुझे मिली है यहाँ पर यमुना में। कीर्तिदा देवी भी बहुत हर्षित हो गई, उन्होंने कहा ये हमारी बेटी है, चलो स्वयं हमारे घर में आई है। दिखने में इतनी सुंदर थी ये बच्ची, परंतु समस्या भी थी। क्या समस्या थी? आंखें बंद की हुई थी और वो बच्ची बात नहीं कर रही थी, कोई रो नहीं रही थी और ऐसे भी लग रहा था कि कुछ वो सुन भी नहीं सकती। तो दोनों नंद वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी बड़े दुखी हो गए कि इतने सुंदर बच्ची है हमारे पुत्री के रूप में आई है लेकिन गूंगी बहरी और अंधी है, क्या किया जाए। लेकिन फिर भी चलो हमारी पुत्री है और वैसे भी सुंदर है, तो अपने घर में रख दिया उन्होंने। उधर जब ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो नारद मुनि क्या दूर रह सकते हैं? नारद मुनि तो भगवान के परम भक्त हैं, वो तो हर जगह भगवान के लीलाओं को दर्शन करने के लिए बड़े आतुर रहते हैं, कहां लीलाएं चल रही हैं भगवान की। और भगवान श्री कृष्ण को अवतीर्ण करने के पीछे नारद मुनि की तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। नारद मुनि सब जगह घूमते रहते हैं, खबर लेते हैं सब जगह क्या हो रहा है, और भगवान की योजना के अनुसार यदि कुछ नहीं हो रहा है या कुछ गड़बड़ सा लग रहा है तो अंदर जाके कुछ हस्तक्षेप करते हैं जिसके कारण लोग उनको गलत समझते हैं। तो नारद जी को पता था कि श्री कृष्ण जो परम सत्य हैं वो प्रकट हो चुके हैं। जब श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं तो अब उनकी जो संगी हैं गोलोक वृंदावन से राधा रानी, उनका भी प्राकट्य कहीं तो हुआ होना चाहिए, अभी आज नहीं तो कल होने ही वाली है, और वो भी बेलगाम में तो प्रकट नहीं होंगी, ब्रज में ही होंगी। इसलिए नारद मुनि ब्रज में घूम रहे थे कि कहां किस घर में बच्ची का जन्म हुआ है, हर एक घर में घूम रही थी। आपके घर में कोई बच्ची का जन्म हुआ है क्या? तो कोई कहते हाँ हुआ है, आओ आओ हमारे नारद जी आए हैं तो कौन मना करेगा। सब खुश हो गए कि नारद मुनि का आशीर्वाद मिलेगा। तो नारद जी देखते आशीर्वाद तो देते बच्चे को, लेकिन थोड़े निराश होकर चल गए, ये तो लड़का है, हाँ ये लड़की है, लेकिन ये तो राधा रानी नहीं हो सकती। लेकिन अंत में फिर वो आए वृषभानु महाराज के द्वार में। वृषभानु महाराज को बड़ा आनंद हुआ, नारद मुनि आप मेरे घर में पधारे हैं, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है, मुझ जैसे पतित गृहस्थ के घर में आए हैं, तो बताइए क्या आदेश है हमारे लिए, क्या सेवा कर सकते हैं। तो नारद मुनि ने पूछा, आपके यहाँ कोई थोड़े दिनों में कोई बच्चे का जन्म हुआ है क्या? कितने बच्चे हैं आपके बताइए? मेरा एक बच्चा है। अच्छा, कौन है वो? लड़का है। लड़का है? हाँ, वृषभानु महाराज के पुत्र का क्या नाम है? श्रीदामा। श्रीदामा वैसे राधा रानी के बड़े भाई है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के हम उम्र के हैं। तो वृषभानु महाराज थोड़े शर्मा रहे थे इस बच्ची के जन्म के बारे में बताने के लिए। क्यों? वो सोच रहे थे कि सुंदर तो है बच्ची, लेकिन गूंगी है, बहरी है, अंधी है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा सब लोगों को। फिर भी नारद जी ने पूछा, संशय आया कि बस एक ही पुत्र है, कोई बच्ची भी है? हाँ, आपसे क्या छुपाए नारद जी, है बच्ची भी है। अच्छा है, तो दिखाओ। तो अंदर गए नारद जी, उस बच्ची को देखा तो नारद मुनि भाव विभोर हो गए, समझ लिए कि यही है, वही वही है श्रीमती राधा रानी। और वृषभानु दर्शन कर लिया, लेकिन वृषभानु महाराज के सामने कुछ अपने भक्ति के लक्षण प्रकट नहीं किए और न ही कुछ प्रणाम दंडवत आदि किया, क्योंकि वृषभानु महाराज के भाव को वो बदलना नहीं चाहते थे, क्योंकि वृषभानु महाराज इनको अपनी बच्ची समझ रहे हैं ना। तो फिर वृषभानु महाराज कहने लगे कि ये तो अंधी है बेचारी, गूंगी है, बहरी है, आप कुछ करिए ना, आप इतने बड़े संत हैं, कुछ आशीर्वाद दीजिए, इसको ठीक करिए। तो नारद मुनि देख रहे थे उस बच्चे को, मुखारविंद को, कहने लगे कि वृषभानु महाराज, मेरी बात तो दूर है, जितने भी बड़े बड़े देवतागण है ना ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी, शिव जी, वो उनके पास भी कोई दवाई नहीं है इसके लिए। ये दवाई कोई और दे सकता है इसके लिए, इनको ठीक करने वाले कोई और होंगे। अच्छा, तो कैसे करें, क्या करें? तो उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, आप ऐसे कीजिए, आप नामकरण संस्कार आदि, जो जात कर्म आदि जो भी और संस्कार होते हैं, वो सब आप कर दीजिए। तो आप ये मत सोचिए कि लड़की गूंगी है, बहरी है, अंधी है, इसलिए संस्कार आदि नहीं करने चाहिए, शर्मिंदा होकर आप ऐसे मत सोचिए, आप खुलेआम संस्कार कर दीजिए। और यदि आपको उपाय चाहिए तो आप इस संस्कार के दौरान एक दावत सबके लिए रख लीजिए, प्रसाद के लिए सबको बुलाइए। और हाँ, याद रखिए, नंद बाबा माता यशोदा को भी बुलाइए, हाँ भूलना नहीं उनको बुलाना। तो नारद जी तो जानते थे कि नंद महाराज माता यशोदा आएंगे तो साथ में कौन आएंगे? कृष्ण आएंगे। तो उस समय नारद जी ने सोचा कि ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ कुछ मंत्रों का उच्चारण करके आदि, आप थोड़ा बाहर जाइए, मैं थोड़ी विधियां संस्कार आदि कर देता हूँ। वैसे नारद जी को अकेले में राधा रानी के साथ थोड़ा समय चाहिए था ताकि वो अपने हृदय की प्रार्थना आदि बोल सके। वृषभानु महाराज के साथ होते होते वहां पे वो कुछ भाव में रसाभास सा कुछ हो रहा था, वो उनके भाव को बिगाड़ना नहीं चाहते थे। तो बाहर चले गए, कमरा बंद कर दिया। फिर नारद मुनि ने पूरा प्रणाम किया और श्रीमती राधा रानी की स्तुति करने लगे। फिर राधा रानी जो कि अब उस समय बच्ची के रूप में थी, अब उन्होंने अपना नित्य रूप दिखलाया नारद मुनि को। नित्य रूप श्रीमती राधा रानी का कैसा है? वो एक किशोरी है और गोलोक वृंदावन में उनकी आयु 13.5 वर्ष की है और वो हमेशा उसी आयु की रहती है, 13.5 से 14-15 नहीं होती। कब से 13.5 है और अभी भी है और वैसे भी रहेंगी 13.5 वर्ष। और श्री कृष्ण भी वैसे ही 15-16 वर्ष के दिखते हैं, वो भी किशोर है। तो ये किशोर किशोरी की जोड़ी है, युगल जोड़ी बहुत अच्छी है। तो श्रीमती राधा रानी ने जब अपना मूल स्वरूप दिखाया तो सहन नहीं कर पाए नारद जी, बेहोश होकर गिर पड़े। कौन सहन कर सकेगा? जो लोग ऐसे भजन लिखते हैं ना, जो भक्त नहीं है, हमें दर्शन दे दो, वो जानते नहीं है दर्शन का मतलब क्या होता है। उसको बहुत सस्ता समझते हैं, दर्शन दे दो। अरे दर्शन देने सहन कर पाओगे? पहले तो योग्य नहीं हो दर्शन करने के लिए, दूसरी बात दर्शन करोगे भी तो क्या करोगे बाद में दर्शन लेके, तीसरी बात सहन कर नहीं कर पाओगे। ऐसा सौंदर्य, ऐसा तेज, असहनीय हो जाएगा। नारद जी जब सहन नहीं कर पाए, जैसे कहते हैं हम किस खेत के मूली, हम क्या सहन कर पाएंगे, तो इतनी सस्ती चीज है ये नहीं। तो नारद जी बेहोश होकर गिर पड़े, तो श्रीमती राधा रानी ने हल्की सी मुस्कान मुस्कुराते हुए नारद जी का स्पर्श करके पुनः जागृत कर दिया। नारद जी क्या उनको पता नहीं, होश ठिकाने नहीं उनके, वो स्तुति करने का प्रयास कर रहे हैं, मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं उनको पता नहीं, हड़बड़ा के वो कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। फिर बड़े मुश्किल से अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि बाहर बेचारे विश्वभानु महाराज खड़े हैं, सोच रहे होंगे कि इतना समय इतने लंबे संस्कार क्या कर रहे हैं। तो अपने आप को बड़े मुश्किल से संभाल लिया नारद मुनि ने, श्रीमती राधा रानी की कृपा मिली और फिर से श्रीमती राधा रानी अपने बच्चे के रूप में प्रकट हो गई। फिर दरवाजा खोल दिया नारद मुनि ने, आइए आइए, हमने संस्कार विधि आदि सब कर दी, अभी आप सबको बुलाइए। तो फिर वृषभानु महाराज ने बड़े आनंद से घोषणा कर दी सारे जगह, सारे ब्रजभूमि में, कि हमारी एक पुत्री हुई है। तो बड़े आनंद से सभी लोग अभिनंदन देने के लिए मुख्य रावली नाम गांव में वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी के घर में आए। सभी ने आकर बच्ची को देखा, आश्चर्यचकित हो गए, इतने सुंदर बच्ची, और ऐसे गुणगान कर रहे थे सारे ब्रजवासी के मानो हरे के 100 मुख हैं। और फिर नंद महाराज, माता यशोदा भी आई, और वो जब आए तो कृष्ण भी बहुत छोटे थे उस समय, वो भी तो इतने बच्चे ही थे। तो नंद महाराज और माता यशोदा जब वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी के साथ बात कर रहे थे, अभिनंदन दे रहे थे, तो उस समय श्री कृष्ण अपने घुटनों पर चल के गए, जाकर जिस स्थान में श्रीमती राधा रानी सो रही थी और पास में गए, उस खटिया में अपने हाथ पकड़ा, उसको पकड़ के अपने आप को खींच लिया बड़े मुश्किल से और श्रीमती राधा रानी के पास में गए। जब श्री कृष्ण के दिव्य शरीर के सौरभ को या सुगंध को सूंघ लिया श्रीमती राधा रानी ने, उनके नसिकों के भीतर वो सुगंध गया, तो तुरंत श्रीमती राधा रानी समझ गई कि अब श्री कृष्ण आ गए। तो ऐसे शास्त्र में बताया हुआ है कि श्रीमती राधा रानी इसलिए गूंगी बहरी और अंधी होने के नाटक कर रही थी, क्योंकि वो सबसे पहले कृष्ण को देखना चाहती थी, इस दुनिया को नहीं देखना चाहती थी पहले। जब कृष्ण पास में आए, उनको पता चला कि श्री कृष्ण आए हैं, तो उस समय उन्होंने अपनी आंखें खोल दी, और सबसे पहले चीज व्यक्ति जिनको उन्होंने देखा आंख खोलने के बाद, वो है कृष्ण। इसी तरह से यहां भी इस दुनिया में, खास करके बच्चों के समाज, भक्तों के समाज में जब जन्म होता है, तो सबसे पहले जब बच्चा बाहर निकलता है, कृष्ण को दिखाना चाहिए, ताकि सबसे पहला दृश्य, नहीं तो वो डॉक्टर को, इनको, उनको सब देखेगा यहाँ क्या है। तो सबसे पहले कृष्ण को दिखाओ, कृष्ण की तस्वीर, राधा कृष्ण तस्वीर दिखाओ उनको, ऐसे भले समझे न समझे, आत्मा तो समझता है। तो राधा रानी फिर संतुष्ट हो गई। उधर नारद मुनि इनको जब दर्शन मिला था उस समय, वो तो निकल गए बाहर जाके, वो उनको पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अब उनको प्रेमावेश में आके वो तो बस गए गोवर्धन के पास में बैठे, वहां स्थान है नारद कुंड, वहां बैठे फिर वहां अपना भजन करने लगे। तो यहाँ अब राधा रानी ने जब अपनी आंखें खोल ली, हंसना शुरू कर दिया, सुनना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, तो वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी और अन्य ब्रजवासियों की खुशी की सीमा नहीं रही। बहुत आनंदित हो गए सभी लोग, खूब खुशियां मनाने लगे सब। गर्ग संहिता में संक्षेप में वर्णन भी है कि किस तरह से खुशियां मनाई रही। गायों का दान हुआ, बहुत सारे उपहार आदि सबको दिए, और ऐसे श्रीमती राधा रानी का भाद्र शुक्लाष्टमी की तिथि में दोपहर के समय 12 बजे हुआ था। और थोड़े समय बाद, थोड़े नारद मुनि के आने के बाद, फिर उनके आदि अन्य संस्कार आदि भी सब किए गए। तो राधा रानी के प्राकट्य दिवस पर हम श्रीमती राधा रानी के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं कि आप कृपया कदा करिष्यसि हे मां कृपा कटाक्ष भाजनम, जैसे आज सुबह हम बता रहे थे कि कब वो दिन आएगा कि आपका कृपा कटाक्ष हमारे ऊपर पड़ेगा और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो आपकी सेवा में हमें आप रखिए, सदैव रखिए। वास्तव में हम सीधे कृष्ण के दास नहीं है। सीधा कृष्ण का दास होना वो तो केवल श्रीमती राधा रानी का स्थान है। श्रीमती राधा रानी के जो सेविकाएं हैं उनके सेवक हैं, उनके सेवक हैं हम, उनके सेवक। तो ऐसे एक श्रृंखला है, एक परंपरा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गोपी भर्तुः पदकमलयोर दास दासानु दासः, कि मैं कौन हूं, मैं गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण, गोपी भर्तुः पदकमलयोर, उनके चरण कमलों के जो दास दासानु दास हैं, उनके दासों के दासों का मैं दास हूं। तो ऐसी भावना यदि रहेगी हमारी, तो श्रीमती राधा रानी अवश्य बहुत प्रसन्न होंगी और हमें कृपा बरसाएंगी, जिससे कि हम श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में निष्कपट और शुद्ध प्रेममयी सेवा कर पाएंगे। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो इसमें ये हरे शब्द जो होता है ये राधा रानी का संबोधन है। श्री कृष्ण है हरि, जो सब कुछ हरण करते हैं। हर हर लेना, सर्व अमंगल हरे इति हरि, हमारे हृदय से सब अमंगल चीजों का हरण करते हैं इसलिए उनका नाम है हरि। साथ साथ प्रेम दिया मन हरे, हमारा मन हरण करके उनके प्रति प्रेम प्रदान करते हैं इसलिए उनका नाम है हरि। परंतु हरि, हालांकि वो सब कुछ हरण करते हैं सबसे, परंतु उनका मन हरण करती है राधा रानी, इसलिए राधा रानी का नाम है हरा, जो हरि का मन हरण कर लेती हैं। और जब हरा का संबोधन होता है, जब हरा को बुलाते हैं तो हरे कहते हैं, जैसे हे अंबे, हे नर्मदे, हे गंगे, बुलाते हैं संस्कृत व्याकरण के अनुसार, तो फिर हरे बुलाते हैं। तो हरे ये राधा रानी का संबोधन है, हरे कृष्ण, इसका मतलब है राधा कृष्ण। कई बार जब भक्त लोग कीर्तन करते हैं तो हरे कृष्ण कहते हैं, तो कृष्ण तो कभी हारते नहीं है ना, जीते कृष्ण कहना। हरे कृष्ण कहने से इसका मतलब है कृष्ण हार जाते हैं, कृष्ण तो सदैव जीतने वाले हैं, कृष्ण कभी हारते नहीं हैं। तो हरे कृष्ण नहीं कहना चाहिए, कहना भी है तो जीते कृष्ण कहना चाहिए, लेकिन मंत्र वैसा नहीं है। मंत्र है हरे कृष्ण। और प्रभुपाद जी बताया करते थे कि महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इसका मतलब है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, हे कृष्ण की दिव्य शक्ति श्रीमती राधा रानी, कृपया आपके चरण कमलों में हमें सदैव रखिए और आपकी सेवा करने का अवसर हमें प्रदान कीजिए। तो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने का मतलब है कि हम राधा रानी और कृष्ण से सेवा चाहते हैं, और ऐसी सेवा में लग जाना, ये हम इससे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इससे ऊंचा और कोई सौभाग्य हमारे जीवन में नहीं है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम एक छोटे अणु के कण के समान, धूल के कण के समान उनके चरणों में रह जाएं नित्य रूप से। तो ऐसे ही प्रार्थना आज हम श्रीमती राधा रानी के चरणों में करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।